जयत जन्म वासुदेव की जन्म राधो यद्वर परिषद कल तो विरसन नगामन स्थिर चरण जिन्होंने सुष्म कशिम के बैतपुर वनिता नाम बात में कल और परसों इसकी व्याख्या के लिए अब थोड़ा सा ये रह गया क्योंकि कल ये समाप्त होगी परसों तक इसको रखा जाएगा प्रतिपदा के दिन से। अच्छा महीना तो बदलेगा
मैंने बदल गया था आज से फरवरी मार्च आज फरवरी हो गया
हम लोग इस महीने के महीना
अच्छा
हम लोग भारतीय माघ महीना
अभी देर है
अभी आरंभ पूर्णमासी को खत्म होगा और प्रतिपदा से दूसरा कुछ हम लोग आ रहे हैं सोचते हैं जो पहले नरोत्तम ठाकुर की प्रार्थना
प्रेम भक्ति चंद्रिका
प्रार्थना उसको संक्षेप में भाषण इसके बाद में फिर चैतन्य चैतामृति या दूसरा कोई ग्रंथ यहाँ पर ब्रज ही हुआ है तू तब कथामृतम इसका अर्थ है तब कथा अमृतम एव तुम्हारी कथा ही अमृत है। वैसे ही ब्रज तू ब्रज ही है तू दूसरा अर्थ बताया ब्रज को ब्रज मथुरा
ब्रजंच पुरंच
ये तीनों जगह की कविता बंता शब्द का अर्थ बताया अनुराधवती विशेष करके बन शब्द से बनता जो कृष्ण की प्रकाश से प्रतिविधान करती हैं वो ब्रज स्त्रियां इसलिए बनिता ब्रजपुर बनिता नाम बर्धयन कामदेव कल ये बताया जब कामदेव का तात्पर्य है काम के जो देव हैं अर्थात प्रेमता के प्रेम के जो देव हैं अपने ही बतला रहे हैं बर्धयन गोपियों के हृदय के जो आराध्य देव हैं या उनके प्रेम के जो देवता हैं वर्धयन उनको बढ़ाते हैं कौन कृष्ण ही बढ़ाते हैं और बढ़ने वाले भी वही हैं बढ़ाने वाले भी वही हैं दोनों इसलिए यहाँ पर कृष्ण ही जय जयजुत्सव ये समझना चाहिए हम लोगों को यह जो प्रेम है इस लोक का यह कोई चीज नहीं, ये लोक बड़े धाम की संपत्ति है और वह चिन्मय संपत्ति है। यह केवल इसको कृष्ण या कृष्ण के अत्यंत अनुरागी जन ही इसको दे सकते हैं, दूसरे नहीं दे सकते। कृष्ण के एकांतिक अनुरागी, ब्रज के रसिक वैष्णव यदि कोई हो ऐसे, अथवा गुरु कृष्ण प्रसाद देता है भक्ति दस्तावेज के लिए, ये और भी दुर्लभ। तो इसलिए ये कृष्ण ही कृपा करके जीवों में इस वृत्ति को देते हैं। ये सबसे दुर्लभ चीज है, इसलिए दुर्लभ लोगों में ही इस चीज को देंगे, सबको जहां तहां जैसे तैसे इसको नहीं लुटाएंगे। ऐसा कोई दुर्लभ व्यक्ति हो सौभाग्य से कोटि कोटि लोगों में से किसी एक व्यक्ति को यदि ऐसे प्रेम का प्रति लोभ हो, उसको भी जांच आई करके काट छांट करके तब देखिए साधारण। इसलिए ऐसा प्रेमी व्यक्ति कभी कभी किसी युग में दिखाई पड़ता है। महापुरुष के समय में कुछ लोग आए थे, उनको देखा जाए, इसके बाद में खूब बिरले जदा कदा कभी कभी ऐसे व्यक्तियों को देखा जाता, सभी समय में। इसलिए ब्रज सुंदरियों की श्रेष्ठता को सूचना के लिए ब्रज पूर्व वनिता नाम वर्धयन काम के लिए पहले बतलाया क्रमशः जन साधारण के लिए हृदय में निवास करने वाले उनके आराध्य हैं, ऐसे जो कृष्ण है ये जय दुख को। फिर बतलाया देवकी जन्मवाद, इसके बाद में जदुवर परिषद, फिर अधर्म का विनाश करता है धर्म की प्रतिष्ठा करने वाले स्थिर चर मृज नग्न, स्थिर और चर जड़ और चेतन समस्त जीवों के चेतनात्मा चलने और स्थाव और जंगम समस्त प्राणियों के समस्त प्रकारों को दुख को दूर करने वाले। और दूसरा इसका किया ब्रज ब्रजी ब्रज के जो स्थिर और चल जितने भी प्राणी हैं उनको दुख अर्थात दिलक दुख को दूर करने वाले। और अंत में बताया सुष्मी मुखे ब्रजपुरानंदयन का अंत में। इसलिए सबसे अधिक ब्रज की बलिताओं की ही यहाँ पर श्रेष्ठता दिखलाई जाएगी। यहाँ पर बताया है ब्रजपुर वनिता अर्थात ब्रजपुर के वनिताओं के हृदय स्तर जो काम है कामानुगा भाव प्रेम काने से भी वो नहीं होगा, वह प्रेम जो काम संबंधी है अपराकृत ब्रज का, जो गोपियों के हृदय में जो काम है उस काम के अधिष्ठात्री देवता से ये अभिन्न है। अधिष्ठात्री देवता प्रेम के अधिष्ठात्री देवता कौन है, ब्रजनंदन श्याम सुंदर किशोर श्याम सुंदर है। ये कामदेव कृष्ण एक है, उन्हीं को बढ़ाने वाले हैं। कौन बढ़ा रहा है, कृष्ण, और बढ़ाते हैं किसको, अपने को। किंतु कृष्ण से यहां पर कामदेव का कुछ अधिक वैशिष्ट है। गोपिकाओं के जो वर्धनशील जो कामदेव हैं उनको और भी बढ़ाते हैं, वर्धनशील तो है नित्य नौ नवाय और उसको भी ये बढ़ाने वाले हैं। अर्थात श्री कृष्ण स्फूर्तिमय धारक अप्रापितर, ये अप्रापित भाव दिखलाने के लिए, अप्रापित है कोई जगत किस नहीं है इस चीज को दिखलाने के लिए परमानंद के पराकाष्ठा रूप में इसको दिखलाने के लिए। अर्थात वह जो प्रेम है वह स्वयं कृष्ण ही है, वह प्रेम दूसरा, क्योंकि रसो वैश्य दोनों एक। वृंदावन समस्त लीलाओं का घना भाव है वृंदावन स्वयं। वृंदावन मम पावनम तमेव, वृंदावन मम जीवनम तमेव, वृंदावन मम
भूषणम तमेव,
भूषणम तमेव, वृंदावन मम सब जस
तमेव।
इसलिए वृंदावन समस्त लीला विलासों का आकर होने के कारण इसको ब्रजपुर कहा गया। इसलिए वे कामदेव निज बनिता गोपियों के, अर्थात अपने काय गुरु जो गोपियां उनकी काय गुरु, राधा जी की काय गुरु मैंने कृष्ण की भी काय गुरु है। यहां पर काम का तात्पर्य हास्य युक्त श्रीमुखे न सुस्मित श्रीमुखे न, कैसे सुस्मित हास्य युक्त मुख में वेणुवादन करते करते स्वयं तद्रूप विराजमान है। यहां पर काम का शब्द का एक अर्थ सनातन गोस्वामी देते हैं, कामान स्व अभिलाषान दिव्यति अतत प्रकाशयति। जो समस्त जीवों के निखिल कामनाओं को उनके अभिलाषाओं को प्रकाशयति प्रकाश, अथवा स्व अभिलाषान अपनी कामनाओं को जो प्रकाश करते हैं, और भक्तों के निकट भक्त लोग अपनी अपनी अभिलाषाओं को प्रकाश कृष्ण के यहां करते हैं और कृष्ण उसको पूर्ण करते हैं। किंतु एक स्थल वृंदावन ऐसा है जहां पर कि कृष्ण ही अपनी दिव्य अभिलाषाओं को प्रकाश करते हैं और गोपियां उनको परिपूर्ण करती हैं। उल्टा यहां पर आपको तो यहां पर यही है, कामदेव कामान काम कामदेवान कामान स्व अभिलाषान, कृष्ण की जितनी प्रकार की अभिलाषाएं हैं उसको दिव्यति प्रकाया प्रकाशयति, उसको प्रकाश करते हैं और गोपियां उसको परिपूर्ण करती हैं। अथवा कामेन काम के द्वारा स्वभिलाषेन दिव्यति क्रीडति जह स कामदेव, जो कामनाओं को अर्थात अपनी मनोभिलाषाओं को लिए दिव्यति क्रीडति स्वयं क्रीड़ा करता है अपने मनोभिलाषाओं के लिए। कैसे अध्याय के प्रथम श्लोक में यह बताया गया, पहला श्लोक क्या है, पहला श्लोक
भगवान पितारात्रि
भगवान पितारात्रि
सरदुल्लिका विक्षरन्तु रमश्चक्रे विक्षरन्तु रमश्चक्रे विक्षरन्तु
रमन्तु मनश्चक्रे स्वयोगमाया। यहाँ पर मन रंतुम मनश्चक्रे, रमण की इच्छा किसने की, कृष्ण ने स्वयं की, इनके अंदर में अभिलाषा हुई, तो यह राज किसकी अभिलाषा से हुआ, कृष्ण की अभिलाषा से। रंतुम मनश्चक्रे उन्होंने किया और सब उन्होंने बैंड बजाई, सब गोपियां आ गई। जैसे आराध्य देव को बुलाया जाता है तो कृष्ण ने आराधना करके उनको बुलाया, किस लिए बुलाया, अपनी कामनाओं के लिए बुलाया, तो गोपियां उनकी आराध्य देव जैसी आ गई, उन्होंने बुलाया तो आ गई। आने के बाद में कृष्ण स्वयं उनको लेकर के नित्य इत्यादि में लग गए। इसलिए यहां पर कह रहे हैं दिव्यति मैंने क्रीडति स्व अभिलाषे न, अपनी अभिलाषा से ही उनके आविर्भाव का हेतु भी यही है, आनंद का साधन करने के लिए, प्रेम का साधन करने के लिए, ब्रज रस का साधन करने के लिए कृष्ण स्वयं नंद बाबा के घर में आदिपुर होते हैं। कामदेव वह कामदेव जो कामेन अभिलाषेन स्वाभिलाषेन दिव्यति देव मने दिव्यति क्रीडति स कामदेव। अर्थात जो तदीय सुख उत्पन्न कारण जाति अभिलाषाओं को भक्त के हृदय में प्रकाश करते हैं, अथवा जो निजानंद में विभोर होकर के शिक्षा में क्रीड़ा किया करते हैं वो कामदेव। इसमें काम गायत्री में भी ठीक ऐसे ही है, एक साथ एक पर। यदि कोई प्रतिपूर्वक इन सब का ध्यान और स्मरण नहीं करेगा किसी भी काल में वैधि भक्ति भी नहीं होगी, रागानुराग की तो बात ही अलग है। यदि उनको अधिष्ठात्री देवता नहीं मान करके प्रीति के साथ में हरिनाम प्रीति के साथ में ये मंत्र सब नहीं करेंगे, चित्त इधर उधर रह करके करेंगे, आलस्य प्रमाद से करेंगे तो क्या सिद्धि होगी। इसलिए चित्त को स्थिर कर और कुछ कहीं कुछ कोई भी आशा न करके इन मंत्रों से ही आशा कर। गुरु जी कृपा करके इस चीज को दिए हैं चिंतामणि से भी अधिक इस मणि को, किंतु इसका प्रयोग ही हम नहीं जानते, यही ऊपर गड़बड़ है, इसलिए इसका प्रयोग नहीं कर पाते हैं। तो ये सब कुछ देने में आ गई, ये सब एक एक से मन, किंतु दुर्भाग्य हम लोगों का है। वैष्णव लोग क्या करते हैं, उन मंत्रों के प्रति, गुरु के प्रति, वैष्णव के प्रति, शास्त्रों के प्रति श्रद्धा को स्थापित कर देते हैं। इसे और कहीं से कुछ नहीं करना, कहीं कुछ भटकने की जरूरत नहीं। ये माल तो गड़ा हुआ है तुम्हारे घर में ही, मैं जानता हूं ये कहां है, तुमको पता नहीं है, किंतु है तुम्हारे घर में, कहीं जाने की भटकने की जरूरत नहीं है। पूरब की तरफ में थोड़ा सा खुद तो देखो, अब तक वो जानता नहीं था ये कहां है, किंतु है। ये गुरु वैष्णव लोग इसको बतला करके ठीक कर देते हैं, इसलिए कहीं भटकने की कोई जरूरत नहीं। यदि पूर्ण विश्वास करके ऐसा होता तो साथ ही साथ ही हम लोग आकर जाते। अतः गोपियों के काम को वर्धन किया करते हैं। गोपियों का काम क्या है, गोपियों के काम देव को वर्धन करते हैं। यहां पर तो कहा जाए गोपियों के, किनको है कौन, अपने आप में गोपियों के वो काम के देवता है, वर्धन उनको बढ़ाना। जैसे नाम साधन और साध्य है, कृष्ण भी ऐसे ही है, दोनों विषय और आश्रय दोनों शुद्ध ही कम है। जैसे गिरिराज गोवर्धन पर विषय और आश्रय, एक आश्रय बन गए कृष्ण और दूसरे बन गए विषय, और बल्कि विषय से वहां जो विषय बने हुए कृष्ण हैं उनकी अपेक्षा ये आश्रय श्रेष्ठ है। जो गिरिराज ये जो बने हुए हैं गिरिराज श्रेष्ठ हैं, जो यहाँ पर उपदेश देकर के उनसे पूजा करा रहे हैं, ये पूजा कराने वाला जो है वो श्रेष्ठ है, कौन श्रेष्ठ है, गिरिराज जी से यही श्रेष्ठ है। तभी उनको विषय बना करके अपने को आश्रय बना कर सबके पूजा कर रहे हैं, अपनी भी पूजा कर रहे हैं। और इसके द्वारा क्या करते हैं, संसार के प्राकृत समस्त प्रकार के कामों को जय कर देते हैं। जय की कामदेव इत्यादि जो कहा गया, कृष्ण ने ये जो राष्ट्र की लीला की थी, हमारे जितने भी टीकाकार हैं सब ने एक स्तर से सिद्धार्थ स्वामी से लेकर सनातन गोस्वामी जीव गोस्वामी हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर या दूसरे दूसरे संप्रदाय के जो आचार्य, सब ने उन्होंने यही लिखा है कि कामदेव के ऊपर में कृष्ण का ये विजय। यदि लोग श्रद्धा पूर्वक इसका श्रवण करें कोई खूब श्रद्धा पूर्वक, तो उसके हृदय में रहने वाले जितनी प्रकार की कामनाएं हैं और काम का साक्षात विभाव है, वह निश्चित रूप में दूर हो जाएगा। कृष्ण ने अघासुर बकासुर ये सबको मारा, इसके बाद में ब्रह्मा जी का मान मर्दन किया, इंद्र का मान मर्दन किया और ऊपर जम महाकालपुरम में वरुण देव को
ब्रह्मा
शंकर जी को बाणासुर युद्ध में सब देवताओं को एक एक करके हराया, ये सबका आराध्य, बस एक ही केवल बाकी थे जो सब पर विजय करने वाले काम, जो ब्रह्मा को नचा दिया, शंकर जैसे व्यक्ति को नचा दिया, नारद को नचा दिया, इंद्र को तो चुटकी बजाते ही कितनी बार उनको नचा दिया, और कुबेर और ये सब की तो कोई बात ही नहीं, सब लोग को नाक से चना चबावा दिया। ये काम साधारण नहीं है, बड़े बड़े धैर्य वालों को भी न जाने कैसा बना देता है, निर्लज्ज भया बना देता। ऐसे काम को दिखलाया जिसमें करोड़ों करोड़ों या अगणित गोपियां परम सुंदरी अस्तराओं से भी जमुना का निर्जन किनारा, पूर्णिमा चांद और इसके जितने उपकरण हो सकते हैं सब, इसमें नारद इत्यादि ब्रह्मा इत्यादि तो कोई उपकरण न होने से ऐसे ही हार गए, और ये सबको लौटा दिया कि तुम जाओ घर में अपने पत्नियों की सेवा करो, और काम को भी विजय कर दिया, और इसके सुनने वालों को बतलाया ये तुम्हारे सब प्रकार के काम तात्पर्य ये कि जो काम सर्वार्थ घातक है, समस्त लोगों के लिए घातक है के रूप में प्रसिद्ध है, वही काम गोपियों के संबंध में संसार को ध्वंस करने, संसार की आसक्ति को ध्वंस करने वाला है, पंडितों की जो जड़ है, और वही गोपियों से जब संबंधित हो जाता है तो वो परम कल्याणकारी बन जाता है। अतः कृष्ण चरणारविंद को वशीभूत करने के लिए इस काम से बढ़कर के और कुछ नहीं है। मुक्ति मुक्ति और भक्ति का भी फल रूप मिल जाता है, इसलिए हमारे संप्रदाय के, यह हमारे संप्रदाय से बहुत पहले ही सूफी उपनिषद मुनि उनके मंत्र सब लोगों ने इसी भाव से कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए उपासना की, जिसको चैतन्य महाप्रभु जी ने कलयुग में परम सरल सहज और सुगम कर दिया है। अनाधिकारियों को भी चैतन्य महाप्रभु जी ने यह प्रेम दिया कि दृष्टि
एवं दयालु प्रभु नाहित हुआ कृष्ण प्रेम जन्मा जर
दूरदर्शन, दूर के दर्शन से ही इस प्रेम को दे देते हैं, अनायास ही यहाँ तक कि पशुओं पक्षियों को भी इन्होंने दान कर दिया, जगाई मधाई तक भी प्रेम में एकदम नाचने लगे। अब वह प्रेम गोपी प्रेम था या दूसरा साधारण प्रेम तो होगा ही, यह प्रेम प्रतिक्षण नूतन और नूतन से नवतर चरम सीमा को प्राप्त हो रहा था। कृष्ण ही गोपियों के हृदय में कामदेव स्वरूप है, गोपियों के हृदय में वह जो गोपियों का जो प्रेम था वो क्या है, कामदेव, अर्थात तो वही कृष्ण ही का स्वरूप रसो वैसा के रूप में वहां पर कामदेव नहीं है। जिस प्रकार से अन्य लोगों के हृदय में साधारण जगत का काम सब कुछ कराता है, ध्वंस की तरफ में ले जाता है, वहां पर कृष्ण ही स्वयं गोपियों के हृदय में काम बन करके और जगत का कल्याण करते हैं। इस प्रकार से काम रूपी कृष्ण ही सदा काम उद्दीपन किया करते हैं, ऐसे कृष्ण यहां पर जयजीत हो। यहाँ पर और भी एक अर्थ बतला रहे, नाना भी कामों में भगवत विषय जो काम है वह वही परम प्रेम के रूप में बदलता है। यह काम नहीं, नाना भी कामों में जो भगवत विषय काम है, भगवत विषय काम मैंने अनुकूल्य कृष्ण अनुशीलन, उसमें जो भाव वृत्ति है वही आगे बढ़ करके शुद्ध सत्व के रूप में भाव, और फिर वही भाव गोपियों के संग में या परम प्रेम के रूप में प्राणित होकर के कामदेव के रूप में अभिव्यक्त हुई है। यही सुन त्रिमुखे न पर विशेषण में तृतीया हमें प्रलाप के लिए होगा। ईशत हास्य युक्त श्रीमुख विशिष्ट निज सौंदर्य माधुर्य को प्रकटन करके ब्रज वनिताओं के काम संबंधित काम क्रीड़ा अर्थात विस्तार पूर्वक जयजुक्त हो रहे हैं, उनके हृदय में प्रेम का संचार करके वही जयजुक्त हो रहे हैं। जिसका थोड़ा सा अंश नौ वृंदावन में द्वारका में दिखाने पर सभी अपने स्वभाव से विचलित हो गए, थोड़ा सा दिखाने एक क्षण के नंद किशोर मुखारविंदाराजी शोभा द्वार निज सुख विशेष संपादन चतुर्भग सूक्ष करिया गए जे भक्ति। कृष्णचंद्र कभी कभी अपने भक्तों को अपना दर्शन देकर के, जैसे रूप गोस्वामी ने वर्णन किया है, वृंदावने बिहरी तो रीह के लिए मत दीप कैरव भ्रमेण संदर्श यस्य जो जो बदन अरविंदम द्वंदम विधेहि मई कृपाम। वृंदावन में दोनों परम मत्त होकर के विचरण कर रहे हैं, आप अनुग्रह करके अपना वसुंधर दोनों अपने मुखारविंद दर्शन है, जैसे कि मेरा जीवन के साथ हो गया। मैं आप लोगों से यही वंदना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि मुझे वो दर्शन दे। यदि एक बार कभी दर्शन हो गया झलक में भी, तो ये संसार एकदम सदा के लिए भूल जाएगा, फिर उसमें कभी भी रुचि नहीं हो सकती। वर्धयन अर्थात यह वर्तमान निर्देश है, वर्धयन वर्तमान काल की वर्धयन माने वृद्धि प्राप्त हो रहे हैं। अभी बिक्री अंचति इस श्लोक में बिक्री अंचति दशम स्कंध 13वें अध्याय में बिक्री अंचति इत्यादि वर्तमान क्रियापद सब समय राष्ट्र में या श्रीमद भागवत में या यहाँ पर जयति के अधिकम अपि यहाँ पर भी जयति देवकी जन्मबाधो इत्यादि यहाँ पर भी जयति, इसलिए श्रीमद भागवत पूर्व काल का कोई चीज नहीं, सब समय वर्तमान काल का है। अभी भी लीला हो रही है, कोई सौभाग्यवान जीव उसका दर्शन कर सकता है, इसलिए उन स्थान में सर्वदा भगवान प्रकट लीला रूप में लीला कर रहे हैं, ये सिर्फ ऐसा समझ में आता है। और भी लिखा गया है जत्र भगवान संग नहीं तो हरि मथुरा के लिए, जहाँ पर भगवान सब समय अपनी यहाँ पर नित्य लीलाएं कर रहे हैं। द्वारका के भी लिए लिखा है और वृंदावन के लिए भी लिखा है, वृंदावन पर त्यज कभी वो जाते नहीं, तो वृंदावन में भी लीला करते हैं, द्वारका में भी लीला करते हैं, मथुरा में भी लीला करते हैं, और जीवों के हृदय में भी नित्य वर्तमान करते हैं। उनकी लीलाएं सभी हो रही हैं। अद्यापि है गौर लीला करे महाप्रभु जी की लीला है, किंतु कोई कोई सौभाग्यवान जी उसे देखते हैं। दूर नहीं, हमारे हृदय में ही, सर्वत्र ही। थोड़ी सी माया माया जाल उठाए जब हम आंखें देखे सुविशाल चिन्ह। भक्ति विनोद ठाकुर जी वर्णन कर रहे हैं, मैं नौकरी छोड़ करके आया और नवदीप के गुद्रुम दिन में मैंने एक छोटी सी भजन पूजी बनाई। क्यों बनाई? वहां गो माता है, बिना गो माता के कृपा के भाई काम नहीं चले। यहीं पर ब्रह्मा जी ने, इंद्र जी ने तपस्या करके अपने अपराधों का स्खलन किया और महाप्रभु की कृपा करी। इसलिए मैं भी ये क्षमा दान वाले स्थान पर बैठकर के मैं भजन करूंगा। हमारे पाप पाप सब पाप तो उनका है नहीं, कभी कह रहे हैं ये सब माया दूर हो जाए, तो मैं वहां पर आकर के भजन पूजी बना कर। मुझे बड़ी लालसा थी कि महाप्रभु जी का यह स्थान प्रकट हो। उसमें महाप्रभु जी का स्थान जन्म स्थान कहाँ है ये कहीं पता नहीं। जैसे पहले महाप्रभु जी के समय में जब आए तो वृंदावन कहीं नहीं था, चारों तरफ में बंद थे, किंतु यहीं पर ये वृंदावन है, ये राधा कुंड है, ये श्याम कुंड है, ये कोकिला वन है, ये महावन है, ये सब जंगल महाप्रभु जी ने कृपा करके सबको फिर से प्रकट किया। उसी तरह से मायापुर भी चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान। मैं बहुत व्याकुल, अपनी आत्मकथा में मैं बहुत व्याकुल हो गया, कहाँ है उनका जन्म स्थान। इसके लिए मैं पुराने नवदीप शहर में गया और वहां पर लोग कह रहे थे ये श्रीवास अंगल है, ये जगाई मधाई का घाट, कुछ कुछ बतलाते। मैं गया वहां पर देखने के लिए बड़ी लालसा से, वहां पर कोई ना कोई चिन्ह तो होगा। मैंने कहीं कोई चिन्ह नहीं देखा, मैं बहुत निराश हो गया। एक दिन मैं नवदीप धाम की वंदना कर और एक मकान पर जहां मैं ठहरा था उसके छत पर चढ़ गया और चढ़ करके रात 10 बजे तक देखता रहा ये कहीं कुछ चीज कोई दिखलाई पड़ती है कि नहीं, और प्रार्थना हृदय में कर रहा था। हठात देखा उत्तर की तरफ में गंगा से पार एक दिव्य ज्योति दिखाई दी, एक क्षण दिखाई दी, इसके बाद फिर दिखाई नहीं पड़ा। लोगों से पूछा जी भाई उधर में क्या चीज है, तो किसी ने कहा बल्लाल देवी एक स्थान है, कोई कुछ है कोई कुछ है। वहीं पर सुनते हैं कि पुराने लोग कहते हैं कि उधर ही में कहीं महाप्रभु जी का जन्म हुआ। मैं दूसरे दिन वहां पर पहुंचा और चारों तरफ खोजने लगा अच्छी तरह से, एक एक स्थान को देखा, कुछ भी पता नहीं। फिर लौट, फिर दूसरे दिन छत पर एक दो आदमी साथ में देखा, फिर दिव्य, और देखा कि महाप्रभु मृदंग लेकर और हजारों लोगों के साथ में नित्य कीर्तन कर रहे हैं। सभी लोग ढुलक ढलक करके गिर रहे हैं, आंखों से आंसुओं की धार, हरी बोल चल रहा है। क्षण मात्र देखा और फिर अब तो मैंने कहा जैसे जरूर वही पर होगा। वहीं से मैं देखा था एक नारियल का पेड़, ताड़ का पेड़ देखा। दूसरे दिन ताड़ को ये पेड़ को खोजते खोजते वहां कर गया और देखा जी सचमुच वहां ताड़ का पत्र है। और पुराने लोगों से पूछा तो लोगों ने बताया कि हम सुनते हैं कि यहीं पर चैतन्य महाप्रभु दिया होगा, ये भगवान ही देखो दिखलाए। इस विषय में अप्राकृत विषय में मनुष्य कुछ नहीं कर सकता, ये भक्ति भी अप्राकृत वृत्ति है। अप्राकृत
वस्तु
दासों वैष्णव और अपराकित गुरु और अपराकित भगवान की कृपा के बिना भाई ये भक्ति नहीं आएगा। बस एक ही उपाय है इसके लिए, यदि अंतर से यदि प्रार्थना की जाए तो वो कृपा करके स्फूर्ति करा देंगे, ये भक्ति का उपाय। और हम चेष्टा करके कर लेंगे तो भाई वो लाख कोटि जन्म में भी यही काम देव का यहाँ पर प्राप्त कर देंगे। वो स्वयं ही प्रेम को हृदय में स्फूर्ति कराने वाला। स्फूर्ति तीन प्रकार से होती है, एक तो प्रत्यक्ष कोई स्फूर्ति हो जाकर अवस्था जैसे भक्ति विनोद ठाकुर को, दूसरा होता है स्वप्न में, और तीसरी होती है स्फूर्ति में, आवेश में स्फूर्ति होती है, और एक होता है स्वप्न में। भगवान इसी को कहा गया है कि किसी को तीन रूपों में भगवान कृपा करते हैं, किसी के अंदर में स्फूर्ति कराते हैं, बाकी हार्द्र
आलोकदान,
आलोकदान माने आंखों से दर्शन देता, और हार्द्र माने क्या, हृदय में स्फूर्ति कराते, और तीसरा बाचिक, बाचिक से कृपा करते हैं, ब्रह्मा को बाचिक किया है वचन से, वो क्या बोले तुम्हारे अंदर में जो कुछ मैंने सुनाया है तुम्हारे अनुभूति नहीं हो रही है, और प्रत्यक्ष करके देखो अनुभूति के साथ, बस हाथ रखता बस। मध्यम अधिकारी ऐसा भाई नहीं कर सकता, कनिष्ठ अधिकारी की तो बात ही छोड़, वो शास्त्र सुना करके चित्त को सरस बना करके साधन में लगा देगा, ये करो और करो, ये क्या करेगा, चावल दिया, दाल दिया, आटा दिया, मैदा दिया, बूरा दिया, चूल्हा चक्की दे दी, तावा भी दे दिया, कड़ाही दे दी, लो रसोई बनाओ खाओ, बस मध्यम अधिकारी ये करेगा। और उत्तम अधिकारी क्या करेंगे, आ जाओ ठाकुर जी का भोग दिया हुआ प्रसाद तैयार है, पूरी कचौड़ी लड्डू मोहन वो खीर, आ जाओ बैठो, बस साथ ही साथ में दिया बैठा है और खिला दिया। और कनिष्ठ अधिकारी क्या करेगा, यदि वो सर्व सीधा सचमुच में होगा भजन पायन से, ये कहेगा चलो उस स्थान पर ले जाता हूँ जहां पर कि वो मिल सकता है, कहां पर ले जाएगा, जहां पर कि चावल डाल, चावल डाल तेल मसाला ये सब मिल जाएगा, और जहां पर तुम रसोई बना सकते हो वहां पर ले जाएगा। वो वहां पर नहीं ले जा सकता जहां पर भंडारा हो गया है और मिल रहा है, फिर ऐसे ही अधिकार के ये सब चीजें देंगे किंतु दूसरे दूसरे, इसलिए बाकी हार्द्र और आलोक, ये तीनों के द्वारा भगवान और उनके भक्त लोग कृपा करते हैं, कभी किसी पर किस रूप में, कभी किसी को, किंतु उसमें मूल है साधन माने प्रार्थना। क्या है वो, निज बल प्रति
विद्यापति भरोसा छाड़िया, निज बल विद्यापति भरोसा छाड़िया,
निज बल चेष्टा बुद्धि विद्या सबके प्रति बुद्धि को छोड़ करके भरोसा छोड़ करके,
तुम्हारी इच्छा ऐसे निर्भर करिए,
तुम्हारी इच्छा है अच्छी कभी, हम लोग अभी अब आप लोगों में से कोई हो गया तो वो महान पुरुष, किंतु हमारा तो ऐसा नहीं, ऐसा लोग यदि हो ये सब छोड़ छाड़ कर उनके चरणों में अपने को समर्पित कर दे, एक सेकंड नहीं लगेगी, यही इसी का नाम है साधन, सबके प्रति बल बुद्धि भरोसा सब छोड़ करके उनके चरणों में चढ़ा। इसलिए कृष्ण ही स्वयं इस चीज को दीपना करते हैं, स्फूर्ति करते हैं, जैसे गोपियों के हृदय में किया, गोपियों में तो नित्य स्थायी है, किंतु भक्तों में यदि उसकी दीपना कर सकते, ऐसे जो कृष्ण है वो जयजुक्त हो। जयजुक्त इसलिए, जय किस लिए देते हैं? जय देने का कारण ये है, जय माने क्या? जय और पराजय दोनों को एक साथ रखो। हमारे यहां पर जितने काम हैं, क्रोध लोभ मद मोह युक्त जो मैं हूं, दस्यु जैसा अभिमान इत्यादि से भरा हुआ मैं बद्ध जीव हूं, मैं हर जाऊं और आप आता तो हमको पराजित कर अपनी पक्ति में नहीं जुट सका, ये इसका तात्पर्य। नित्य लीला प्रोम उष्णुपाश्रीमत गुरु पाद पद्म की जय। जय मैंने क्या? वो जय हूं और हमारा पराजय, मैं हार जाऊं, अर्थात काम और हमारे ये दुर्गुण है वो हार जाए और वो लोग जीत जाए और जीत करके क्या अपना बना ले, मैं उनका हो गया हूं, ये भाव। और जब जय देने के समय में ये नहीं है, केवल एक वो क्या होता है, खाना पूरी तैयार, खाना पूरी कर रहा है, सब कुछ में जय देने का नहीं था। यहां पर एक और बात है, ब्रजपुर बनता नाम वर्धयन कामदेवम। प्रेम दो प्रकार का होता है, मिलन और विरह, संभोग और विरह। यहां पर गोपियों के विरह और मिलन मैं जो प्रेम है दोनों को बढ़ा, नहीं तो बढ़ेगा कैसे? यदि विरह न हो तो फिर प्रेम बढ़ेगा कैसे? तो एक ही जैसा स्थिति रह गया, जैसे कि वो हित संप्रदाय में वहां पर वियोग नहीं है कभी, सब समय मिलन है, तो प्रेम भी वैसा होगा। किंतु यहां पर कह रहे हैं, यहां पर सनातन गोस्वामी जी ब्रजपुर बनिता नाम वर्धयन कामदेव, बढ़ेगा कैसे? कभी ओसल हो जाता है, पर अप्रकट हो जाता है, ठीक प्रकट होता है ये प्रेम। तो यह प्रेम विप्रलंब रूप से जब होता है तब फिर उसको सुजोग मिलता है बढ़ने का। यदि समुद्र में भाटा और ज्वार न हो तो समुद्र बढ़ रहा है यह कैसे मालूम होगा? यही उसका सौंदर्य है, ज्वार और जब ज्वार हो भाटा होगा, जितना ही भाटा नीचे होगा उतना ही वो ज्वार अधिक ऊंचा होगा। फिर अब उसका अर्थ बतला रहे हैं, जन निवासो, जो समस्त जीवों के अंतर में परमात्मा के रूप से अवस्थित हैं, अपने विशेष भक्त देवकी के रूप में उनके पुत्र के रूप में वही आए और पीड़ा विरोध करते हैं। हृदय में तो माँ प्रतीत नहीं होते हैं, वो तो सर्व अंतर ज्ञानी कर्म फल प्रदाता के रूप में वहां, किंतु वही विशेष प्रेम के रूप में अब हृदय में जो थे अंतर ज्ञानी, अब वो क्या हुए? बाद में प्रकट हो जाते हैं, अन्यत्र केवल अंतर्यामी रूप में वास करते हैं, किंतु देवकी जी के हृदय में वास करने पर भी पुत्र के रूप में बाहर आकर के संभाषण इत्यादि करते हैं। संभाषण क्या करे? वो स्तव स्तुति करने, कृष्ण ने कहा कि मैं वही हूं जिसको तुमने पूर्व में आराधना की, अब मैं बालक बन जाता हूं और मुझे गोकुल में दे आ, कबाट अपने आप खुल जाएंगे, ये सब बतला है। बस अपने आप कबाट कबाट खुल गए, बेड़ी टेड़ी रखी सब खत्म हो गई और उसको गोकुल में जाकर के रख करके ये सब लीला करने लगते हैं। वही पर ब्रह्म अंतर्यामी जिनका रूप नहीं है वो ऐसे बन करके वहां पर लीला करते हैं, वही अंतर्यामी। अभी अंतर्यामी के रूप में दिखाई नहीं पड़ते, किंतु प्रेम हो जाएगा तो वो दिखलाई पड़ेगा और ऐसी लीला विनोद करने लगेंगे, इसलिए उनको देव कहा। देव माने फिर कहते हैं चतुर्वर्ण परिषद, यदुवीर जिनके सेवक हैं, ये सेवक ही सर्विधि अधर्म और अधर्मों के हेतु भी दुष्ट राजेंद्र वर्गों की हत्या करने में, उनको समन करने में समर्थ हैं। जैसे कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न जी, अनिरुद्ध जी, प्रद्युम्न जी देवताओं के साथ युद्ध में जब जयंत इंद्र का पक्ष लेकर उनका लड़का लड़ने लगा पर्याप्त रण के समय, तो ये प्रद्युम्न जी
जयंत से
वहां पर पहुंच गए। उनको किसी भी रथ और विमान इत्यादि की कोई जरूरत नहीं, जब पहुंच गए और जयंत और इंद्र सबको परास्त कर दिया और कृष्ण लेकर के घर में चले। अकेले बलदेव जी क्या नहीं कर सकते, कृष्ण चले गए रुक्मिणी के यहाँ, रुक्मिणी की शादी होने जा रही है, सब तैयारी शिष्यपाल कर करके बर बन करके आए। रात में ब्राह्मण कृष्ण के यहाँ पहुंचे, कृष्ण से किसी ने से नहीं कहा और ब्राह्मण के को आगे भेज करके या उनको साथ लेकर के और झट अकेले ही निकल आए, केवल एक सारथी को लिया और चल दिया। बलदेव जी पूछते पूछते जी बलदेव जी कहाँ गए कृष्ण, क्या पता लगा, ये इधर गए हैं, पर झट सेनाओं को लेकर के और उनके पीछे पहुंचे। जब वो पहुंचे अभी रास्ते में एकदम वहां पर पहुंचे कुंडिन नगर में, इतने में सवेरा हो गया था और रुक्मिणी